नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा में कहा, राष्ट्रगीत ने देश के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी। उड़ान सेवा के सुचारू संचालन के लिए दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन के प्रयास जारी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, राजधानी के बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने के साथ साथ दिल्ली को देश का नॉलेज और इनोवेशन हब बनाना सरकार का संकल्प। अदालत ने लाल किला विस्फोट मामले में गिरफ्तार 3 डॉक्टर और 1 मौलवी की एनआईए हिरासत बढ़ाई। और दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आईआईटी हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा शुरू हुई। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने वर्ष 1875 में लिखा था। चर्चा की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के मंत्र ने समूचे देश को शक्ति और प्रेरणा दी और स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जावान बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वंदे मातरम का स्मरण इस सदन के सभी सदस्यों और देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा, वंदे मातरम ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
यही वंदे मातरम है जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आखिरी सांस तक वंदे मातरम का जयघोष किया।
हमारे जांबाज सपूत बिना किसी डर के फांसी के तख्त पर चढ़ते थे और आखिरी सांस तक वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम यही उनका भाव घोष रहता था। खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रामकृष्ण विश्वास, अनगिनत जिन्होंने वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे को अपने गले पर लगाया था।
श्री मोदी ने कहा कि जब वंदे मातरम अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा था, तब देश आपातकाल से प्रभावित था।
वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी।
नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि हवाई यात्रा की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उड़ान ड्यूटी समय सीमा FDTL दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन पर श्री नायडू ने राज्यसभा को बताया कि सरकार कई उड़ानों के रद्द होने की स्थिति की जांच कर रही है, जिसके कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने बताया है कि हवाई अड्डे पर परिचालन सुचारू रूप से जारी है, हालांकि कुछ उड़ानों को रद्द या उनके समय परिवर्तन किए जा सकते हैं। आज जारी एक परामर्श में हवाई अड्डा प्रशासन ने कहा कि कर्मचारी व्यवधानों को कम करने और यात्रियों की सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। यात्रियों को संबंधित विमानन कंपनियों से अपनी उड़ान की स्थिति के बारे में ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। परामर्श में कहा गया है कि हवाई अड्डे तक और हवाई अड्डे से मेट्रो सेवाओं, बसों और टैक्सी जैसे कई सार्वजनिक परिवहन विकल्प उपलब्ध हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में शुरू हुए दिल्ली AI ग्राइंड को लेकर कहा है कि दिल्ली सरकार चाहती है कि इसके माध्यम से राजधानी के बच्चे AI युग का नेतृत्व करें। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पहल से स्कूल इनोवेशन लैब्स बनेंगे, बच्चे सृजनकर्ता बनेंगे और एआई उनकी जिज्ञासा को नवाचार तथा समाधान में बदलने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली के बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने के साथ साथ दिल्ली को भारत के नॉलेज और इनोवेशन हब बनाना उनकी सरकार का संकल्प है। वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये ग्राइंड स्कूलों, छात्रों, उद्योगों और नव प्रवर्तकों को एक साथ जोड़ रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि अगले 6 महीनों में ये अभियान 5 लाख शिक्षार्थियों को जोड़ेगा, 1000 प्रोटोटाइप विकसित करेगा और 100 फाइनलिस्ट का चयन करेगा जो आगे चलकर 50 एआई एम्बेसडर बनेंगे। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ अमृतसर पहुंचकर हरमंदिर साहिब में शीश निवाया और दरबार साहिब में शुक्राना अदा किया। इसके अलावा अपनी यात्रा के दौरान श्रीमती गुप्ता ने दुर्गियाना मंदिर और वाल्मीकि मंदिर का भी दर्शन कर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृतसर की इस पवित्र भूमि पर दर्शन करना उनके लिए गहरा आध्यात्मिक अनुभव है और अमृतसर हर रूप में आस्था और ऊर्जा की नगरी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने बताया कि हाल ही में राजधानी के लाल किले में आयोजित गुरमत समागम की सफलता के बाद वह आज अपनी कैबिनेट के साथ श्री हरमंदिर साहिब में शुक्राना अदा करने आई हैं।
दिल्ली सरकार ने, हमारी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने मिल करके एक बड़ा आयोजन दिल्ली में समागम के रूप में किया, जहां लाखों भक्तों ने गुरु साहब के चरणों में आके शीश नवाए। मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से, मेरे भाइयों की ओर से, हमारी सरकार की ओर से गुरु साहब के चरणों में हमारा नमन। और देश में अलग अलग सरकारों ने गुरु साहब की शहादत को जिस तरीके से मनाया, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in को पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने 10 नवंबर को लाल किला विस्फोट मामले में गिरफ्तार 3 डॉक्टर और 1 मौलवी की एनआईए हिरासत आज 4 दिन के लिए बढ़ा दी। चारों आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर अदिल राठर, डॉक्टर शाहिना सईद और मौलवी इरफान अहमद वागई को प्रधान और सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना के समक्ष पेश किया गया। इससे पहले उन्हें 10 दिन की एनआईए हिरासत में लिया गया था। एनआईए ने इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांचकर्ता इसे सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल बता रहे हैं। इसका खुलासा सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया था। एजेंसी का कहना है कि वह कई सुरागों का पता लगा रही है और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान के लिए राज्यों में तलाशी ले रही है। लाल किला कार विस्फोट में 15 लोग मारे गए और कई घायल हो गए थे। यह विस्फोट जिस गाड़ी में हुआ था उसे डॉक्टर उमर उन नबी चला रहा था। दिल्ली सरकार ने देवी बस रूट 7701A को साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के मौजूदा टर्मिनल रूट से आगे बढ़ाते हुए मैदान गढ़ी में स्थित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान तक बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार की यह पहल सुबह और देर शाम के समय यात्रियों की सुरक्षा तथा सुगम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डॉ. सिंह ने कहा कि इस रूट पर रैशनलाइजेशन से राजधानी दिल्ली में अंतिम मील तक कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार शहर के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित, विश्वसनीय और मजबूत सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस फैसले से स्टाफ, विद्यार्थी और मरीजों के लिए अंतिम मील तक पहुंच में काफी सुधार होगा और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बेहतर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज अपने विधानसभा विकासपुरी में कैंप कार्यालय में क्षेत्रवासियों से संवाद किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याएं सुनकर उनका शीघ्र समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने आगे की जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्रवासियों ने भी उनके साथ अपने सुझाव साझा किए। श्री सिंह ने कहा कि जनसेवा ही दिल्ली सरकार का संकल्प है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने बताया कि पूर्वी दिल्ली के कर्दमपुरी क्षेत्र में अब आयुष्मान आरोग्य केंद्र की सेवा शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एमसीडी ने बताया कि इस केंद्र के शुरू होने से इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अब निःशुल्क परामर्श, जांच और उपचार उनके ही क्षेत्र में मिलेगा। निगम ने यह भी कहा कि एमसीडी का यह सतत प्रयास है कि हर परिवार तक बेहतर, किफायती और भरोसेमंद सेवाएं पहुंचे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता ज्ञापन स्वायत्त नेविगेशन के कार्यान्वयन में दोनों पक्षों की क्षमताओं और विशेषज्ञताओं का उपयोग करेगा, जो प्रमुख महानगरों के अंतिम छोर तक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ चरण 2 और चरण 3 के शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए कार्य करेगा। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक बहुस्तरीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क गिरोह का पर्दाफाश कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी 6 करोड़ रुपए से अधिक के बड़े ऑनलाइन निवेश फ्रॉड में शामिल थे, जिसका संबंध देश भर की 165 साइबर शिकायतों से था। पुलिस के अनुसार आरोपी स्वयं को सेबी रजिस्टर स्टॉक ब्रोकर के प्रतिनिधि बताकर लोगों को सेकेंडरी स्टॉक्स, प्री IPO शेयर और ऑफ मार्केट ट्रेड्स में निवेश करने के लिए प्रेरित करते थे। लोगों से उनका विश्वास जीतने के लिए वह फर्जी सेबी प्रमाण पत्रों का भी इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 17 मोबाइल फोन, 21 सिम कार्ड, 124 ATM कार्ड, 56 बैंक पासबुक, 25 चेकबुक, 2 पासपोर्ट और कई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बरामद हुए हैं। आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे 130 विदेशी नागरिकों को निर्वासन के लिए भेजा है। पुलिस के अनुसार इनमें से 87 आरोपी नाइजीरिया, 11 आइवरी कोस्ट, 10 कैमरून, 10 घाना, 4 सेनेगल, 3 लाइबेरिया, 3 सियरा लियोन, 2 युगांडा और 1 गिनी के नागरिक है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बिना वैध वीजा के भारत में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रह रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सुप्रभातम कार्यक्रम की सराहना की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम सुबह सुबह एक ताजगी का एहसास देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें योग से लेकर भारतीय जीवन शैली तक के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय परंपराओं और मूल्यों पर आधारित यह कार्यक्रम ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मकता का अद्भुत संगम है। इसके अलावा श्री मोदी ने कार्यक्रम के विशेष खंड संस्कृत सुभाषित का भी उल्लेख किया, जो भारतीय संस्कृति और विरासत के बारे में एक नई चेतना का संचार करता है। आधे घंटे का यह कार्यक्रम DD न्यूज पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे प्रसारित होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज देश के प्रथम प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS जनरल बिपिन रावत की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा संरचना को आधुनिक, सक्षम और समन्वित बनाने में जनरल रावत का योगदान भारतीय सैन्य इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ताइवान में विश्व तीरंदाजी एशिया की कार्यकारी बैठक बोर्ड की बैठक में शामिल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सचदेवा ने बताया कि बैठक के दौरान सभी सदस्यों ने 2026 में होने वाले तीरंदाजी आयोजनों की रणनीतिक दिशा पर चर्चा की। बैठक में उन्होंने दुनिया भर में तीरंदाजी के सतत विकास और उन्नयन प्रयासों को अधिकतम करने पर भी बल दिया। राजधानी में आज दिन में मौसम साफ रहा, हालांकि शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास का रहने का अनुमान है। राजधानी में वायु गुणवत्ता आज भी बहुत खराब स्तर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा में कहा, राष्ट्रगीत ने देश के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी। उड़ान सेवा के सुचारू संचालन के लिए दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन के प्रयास जारी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, राजधानी के बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने के साथ साथ दिल्ली को देश का नॉलेज और इनोवेशन हब बनाना सरकार का संकल्प। अदालत ने लाल किला विस्फोट मामले में गिरफ्तार 3 डॉक्टर और 1 मौलवी की NIA हिरासत बढ़ाई। और दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आईआईटी हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।